अर्जुन पीछे हटा और छाया की तरह वहां से विलीन हो गया। कमरा अब शांत था, जैसे कोई आया ही न हो। अगले ही पल वह महल के दूसरे कोने में था, जहां घना अंधकार पसरा हुआ था, पर उस अंधेरे के भीतर दबे स्वर थे, कराहें, जंजीरों की खनक, पीड़ा में टूटी सांसों की आवाजें। वह स्थान महल का निजी कारागार था। अर्जुन कुछ क्षण मौन खड़ा रहा, उसकी आंखें अंधेरे में चमकी, फिर उसने अपनी एग्री ऊर्जा को हल्के से मुक्त किया। ऊर्जा हवा की तरह फैल गई, न कोलाहल, न प्रकाश, बस एक मौन स्पर्श। कैदियों के टूटे हुए घाव धीरे धीरे भरने लगे, टूटी हड्डियां अपनी जगह जुड़ गईं। सूजे हुए अंगों की वेदना शांत हो गई, पर जैसे ही उपचार पूर्ण हुआ, अर्जुन ने अपनी ऊर्जा का दूसरा स्पर्श छोड़ा। सभी कैदी गहरी बेहोशी में चले गए। उनके हाथों में बंधी जंजीरों और ताले पर उसने हल्की सी शक्ति डाली, वे पुनर्तः नहीं टूटे, पर इतने कमजोर हो गए कि मामूली प्रयास में चटक जाएं। समय आने पर तुम स्वयं मुक्त हो जाओगे, उसने मन ही मन कहा। अगले ही क्षण वह कारागार से विलीन हो चुका था। अब वह राजकोषीय कक्ष में था, महल का वह भाग जहां राज्य की संपत्ति, दुर्लभ जड़ी बूटियां और गोपनीय सामग्री सुरक्षित रखी जाती थी। अंधेरे में उसकी स्वर्गीय काली अग्नि हल्के से प्रकट हुई, पर वह आग साधारण अग्नि नहीं थी, वह भस्म करती नहीं, आत्मसात करती थी। जो जड़ी बूटियां आवश्यक थीं, जो दुर्लभ थीं और जो वर्षों से संग्रहित थीं, सब उसकी अग्नि में विलीन होती गईं और उसकी ऊर्जा संरचना में समाहित होती चली गईं। कुछ ही क्षणों में जो कक्ष औषधियों से भरा था, वो खंडहर सा सोना दिखने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक छोटे से बक्से पर पड़ी, अंदर एक अंगूठी थी। साधारण व्यक्ति उसे सामान्य धातु समझता, पर अर्जुन, जिसने पिछले जन्म में एक संपूर्ण राज्य पर शासन किया था, वो उसे पहचान गया। यह अंगूठी किसी प्राचीन राजवंश से जुड़ी थी, ऐसे रहस्य से जिसका संकेत उसे अपने पूर्व जन्म में भी नहीं मिला था। उसने बिना संकोच उसे अपने पास रख लिया, फिर उसने दोनों हाथों से कई जटिल मुद्राएं बनाईं। उसके सामने एक छोटा सा काला कमल प्रकट हुआ, कमल बंद था। अर्जुन ने अपनी स्वर्गीय ऊर्जा उसमें प्रवाहित करनी शुरू की। धीरे धीरे वह कमल बढ़ता गया, एक हथेली जितना बड़ा हो गया। उसकी आभा गहरी, रहस्यमयी और भयावह थी। अर्जुन ने चुपचाप वह कमल उसी बक्से के भीतर रख दिया जहां अंगूठी थी। कमल अभी बंद था, पर भीतर ही भीतर वह खिलना आरंभ कर चुका था। जितनी तीव्रता से वह महल में प्रवेश किया था, उतनी ही तीव्रता से वह छत से बाहर निकला। रात्रि के प्रहरी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे, कोई उसकी छाया तक नहीं देख पाया। वह नगर की गलियों से होता हुआ तेजी से गुरुकुल लौट आया। उसके कक्ष में अभी भी उसकी कृत्रिम ज्योति जल रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पूरे समय वहीं उपस्थित रहा हो। अर्जुन शांतिपूर्वक अपने आसन पर बैठ गया, बाहर रात स्थिर थी, भीतर एक नया खेल आरंभ हो चुका था। अंडस्को गुरुकुल की रात सामान्य थी, शिष्य ध्यान में लीन थे, आचार्य अपने अपने कक्षों में, परंतु उस शांति के भीतर एक सूक्ष्म विचलन उठा। वीरेंद्र के लोगों में से एक, तीसरे चरण का साधक, अचानक ठिठका, उसकी नासिका हल्की सी फिरकी। ये कैसी ऊर्जा है, उसने धीमे स्वर में कहा। वह ऊर्जा तीव्र नहीं थी, नहीं स्पष्ट, बस एक क्षणिक गंध, जैसे जली हुई औषधि और किसी अज्ञात अग्नि का मिश्रण। उसकी दृष्टि धीरे धीरे शिष्यों के कक्षों की ओर घूमी और अंततः अर्जुन के कक्ष पर आकर ठहर गई। अर्जुन उस समय ध्यानमग्न बैठा था, उसका चेहरा शांत, श्वास नियंत्रित। साधक ने भीतर झांकने का प्रयास किया, पर उसे केवल एक सामान्य प्रथम स्तर का साधक दिखाई दिया, जिसकी साधना अभी प्रारंभ भी ठीक से नहीं हुई थी। अर्जुन तो अभी तक मणिपुर चक्र को पूर्ण रूप से विस्तारित भी नहीं कर पाया था। संभवतः भ्रम है, उसने सोचा, पर संदेह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उसने बिना कुछ कहे निगरानी आरंभ कर दी। अर्जुन ने आंखें बंद रखी, पर भीतर उसकी चेतना सब देख रही थी। उसने जानबूझकर अपनी ऊर्जा को और भी मंद कर दिया, ये समय टकराव का नहीं था। अभी नहीं, उसने मन में कहा। उधर वीरेंद्र के महल में अराजकता भड़क चुकी थी। निजी कारागार के कैदी एक एक कर जागे, उनके घाव भर चुके थे, उनकी हड्डियां जुड़ चुकी थीं। पहले उन्होंने विस्मय से अपने शरीर को देखा, फिर अपनी जंजीरों को खींचा, चटाक, ताले मामूली प्रयास में टूट गए। कुछ ही क्षणों में कारागार का द्वार भीतर से धकेला गया और वर्षों से दबा हुआ क्रोध ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। स्वतंत्रता, प्रतिशोध, चिल्लाहटे महल के गलियारों में गूंज उठी। पहरेदारों ने तलवारें खींची, पर वे उन कैदियों को पहचान नहीं पा रहे थे। ये वही लोग थे, पर अब उनकी आंखों में भय नहीं था, उनके शरीर में अद्भुत शक्ति थी।
पहला प्रहरी गिरा, दूसरा दीवार से जा टकराया, तीसरे का शस्त्र छिनकर उसी पर चला दिया गया।
कुछ ही क्षणों में महल के भीतर युद्ध छिड़ गया, अफरा तफरी, धुआं, रक्त, चीत्कार। वीरेंद्र के विश्वस्त अधिकारी एकत्र हुए, ये भीतर से किसी की सहायता के बिना संभव नहीं।
कोई गुप्त गुट सक्रिय है, राजकोषीय कक्ष भी जांचो।
सैनिक दौड़े, महल के ऊपरी प्रांगण में खड़े होकर वीरेंद्र ने नीचे फैलते अराजक दृश्य को देखा। उसकी आंखें संकुचित हो गईं, जिसने भी यह किया है वह खेल खुलकर खेल रहा है।
और उसी समय गुरुकुल के शांत कक्ष में अर्जुन ने अपनी आंखें खोली।
उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कुछ भी सीधे नहीं किया था, उसने बस परिस्थितियों को हल्का सा धक्का दिया था। अब लहरें स्वयं उठ रही थीं। अंडस्को महल के भीतर कैदियों का विद्रोह चरम पर था। तभी वीरेंद्र के पिता ने अपनी कमर से एक प्राचीन टोकन निकाला।
उस पर उकेरे गए चिन्ह हल्के से चमके। उन्होंने उसे अपनी मुट्ठी में दबाकर कुचल दिया।
टक, क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। महल की छत के ऊपर आकाश कांपा, हवा भारी हो गई और फिर एक प्राचीन आभा प्रकट हुई, वीरेंद्र के परदादा।
उनका शरीर धरती से कई हाथ ऊपर तैर रहा था, वस्त्र वायु में लहरा रहे थे, केश पीछे की ओर बह रहे थे, आंखें गहरी जैसे शून्य स्वयं उन्हें निहार रहा हो।
वे अमर साधक की भांति आकाश में स्थिर थे। उन्होंने नीचे देखा, कोई क्रोध नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, बस निरपेक्ष दृष्टि।
उन्होंने धीरे से अपना दायां हाथ नीचे किया। उसी क्षण
एक अदृश्य रहस्यमय दबाव नीचे उतरा। कैदियों के शरीर अचानक कांप उठे, उनके पैर भारी हो गए, फिर धड़ाम, वे एक एक कर भूमि पर गिरने लगे।
गुरुत्वाकर्षण जैसे कई गुना बढ़ गया हो, हवा स्वयं उनके विरुद्ध हो गई हो।
वे अपने पैर तक नहीं उठा पा रहे थे, हड्डियां चटकने लगीं, सांस लेना कठिन हो गया। उनका अपना ही शरीर उनका शत्रु बन चुका था।
कुछ ही क्षणों में विद्रोह समाप्त हो गया। परदादा अब भी आकाश में तैर रहे थे।
नीचे जो हो रहा था उससे मानो उनका कोई लेना देना ही नहीं था, उनकी दृष्टि कहीं और थी। उसी समय राजकोषीय कक्ष में रखा काला कमल धीरे धीरे खुलने लगा।
उसकी पंखुड़ियां एक एक कर फैलती गईं और फिर उसके केंद्र से एक सूक्ष्म प्रकाश उठा।
वो प्रकाश दीवार पर नहीं, भूमि पर नहीं, सीधे आकाश की ओर गया। महल के ऊपर एक रहस्यमयी चिन्ह उभर आया, काला और स्वर्णिम। और फिर आकाश बदलने लगा, बादल घिराए, पर वे साधारण बादल नहीं थे।
उनका रंग गहरा नीला था, भीतर से बिजली की रेखाएं चमक रही थीं।
वीरेंद्र के परदादा ने ऊपर देखा, उनकी आंखों का रंग क्षण भर में बदल गया। स्वर्गीय बादल, उन्होंने धीमे से कहा, ये वही बादल थे जो तब प्रकट होते थे जब कोई साधक देवस्थान की सीमा को छूने का प्रयास करता था,
जब कोई साधारण मार्ग से ऊपर उठने की चेष्टा करता था।
ये बादल परीक्षा नहीं लेते, ये रोकते हैं। कई महान साधक इनके प्रहार में अपने प्राण गंवा चुके थे, नीचे सैनिक स्तब्ध थे। वीरेंद्र के पिता भयभीत होकर ऊपर देख रहे थे, पर दादा की भौहें सिकुड़ी।
कौन, उन्होंने मन ही मन कहा, किसने ये सीमा छूने का साहस किया।
बादल और घने हो गए, आकाश में गर्जना हुई, पहली नीली बिजली नीचे उतरी, पर लक्ष्य कोई व्यक्ति नहीं था, वह सीधे राजकोषीय कक्ष की दिशा में गिरी।
महल कांप उठा और उसी क्षण दूर गुरुकुल में ध्यानमग्न बैठे अर्जुन ने अपनी आंखें खोली।
उसके भीतर की ऊर्जा हल्की सी थरथराए, उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी दृष्टि क्षितिज की ओर उठ गई। खेल अब साधारण राजनीति से ऊपर उठ चुका था, अब स्वर्ग ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। अंडस को स्वर्गीय बादल गरजे,
नीली बिजली की अगली धार सीधी राजकोषीय कक्ष पर उतरी।
पर इस बार कुछ अप्रत्याशित हुआ, काला कमल पूर्ण रूप से खिल चुका था। उसकी पंखुड़ियां अब केवल ऊर्जा नहीं बल्कि शून्य जैसी गहराई धारण किए हुए थी। बिजली उसके केंद्र में गिरी, पर नष्ट करने के स्थान पर वो सोख ली गई। कमल कांपा, उसकी पंखुड़ियां और फैल गईं, उसका आकार बढ़ने लगा, एक हाथ से दो हाथ, दो से पांच। कुछ ही क्षणों में वो कक्ष की सीमा को छूने लगा। स्वर्गीय बादलों ने मानो चुनौती स्वीकार की और अधिक बिजली उतरी। नीला प्रकाश, काली अग्नि, दोनों का टकराव नहीं, विलय होने लगा। ऊर्जा अस्थिर हो गई। आकाश में खड़े वीरेंद्र के परदादा का चेहरा बदल गया। यह वस्तु सोख रही है, उन्होंने अपनी संपूर्ण साधना सक्रिय की, दोनों हाथ फैलाए, एक पारदर्शी ऊर्जा गोलक महल के ऊपर बनने लगा, एक रक्षा कवच। परंतु काला कमल अब सीमा पार कर चुका था, उसके केंद्र से एक श्वेत काली किरण फूटी और फिर धम्मम ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पूरा राज्य कुछ क्षणों के लिए प्रकाश में डूब गया, रात दिन बन गई। महल, उसकी दीवारें, स्तंभ, प्रांगण सब प्रकाश की लपट में विलीन हो गए। स्वर्गीय अग्नि और बिजली ने मिलकर ऐसा दाहक प्रहार किया कि पत्थर तक भस्म हो गए। वीरेंद्र, उसके पिता, उसका समूचा परिवार, सैनिक, कैदी, जो भी उस महल के भीतर था, क्षण में राख हो गया। वीरेंद्र का विशाल वंश, जो पीढ़ियों से इस राज्य की शक्ति का प्रतीक था, उस रात लगभग समाप्त हो गया। विस्फोट थमा, बादल धीरे धीरे विलीन हो गए, आकाश पुनः अंधकार में हो गया। अब वहां महल नहीं था, केवल धधकते अवशेष थे। वीरेंद्र के परदादा, जो आकाश में तैर रहे थे, अब धरती पर खड़े थे। वे घायल थे, उनके वस्त्र फट चुके थे, शरीर पर जलन के गहरे चिन्ह थे, श्वास भारी थी। वे धीरे धीरे राख के ढेरों के बीच चलने लगे। वीरेंद्र पुत्र, उनकी आवाज भारी थी पर टूट चुकी थी। वे राख को हाथों से हटाते, पत्थरों को पलटते, पर कोई देह नहीं थी, कोई अवशेष नहीं, कोई अंतिम चीख की स्मृति तक नहीं, स्वर्गीय अग्नि ने सब कुछ भस्म कर दिया था। उस रात महल पूर्ण रूप से भरा हुआ था, सैनिक, परिवार, सेवक सब भीतर विश्राम कर रहे थे। और यही कारण था कि कोई भी जीवित नहीं बचा। वीरेंद्र के परदादा घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में पहली बार निरपेक्षता नहीं, शून्यता थी। ये दैवी प्रकोप नहीं था, उन्होंने धीमे से कहा, ये किसी की योजना थी। दूर क्षितिज की ओर उन्होंने देखा, उनकी साधना अभी शेष थी, उनका जीवन अभी शेष था, और अब उनके पास केवल एक उद्देश्य था। जिसने ये खेल आरंभ किया वो बचेगा नहीं दूर गुरुकुल में। अर्जुन ने अपनी ध्यानावस्था से बाहर आकर गहरी सांस ली। उसने विस्फोट को महसूस किया था, पर उसके चेहरे पर न उत्साह था न भय। कभी कभी उसने मन में कहा, बीज इतना गहरा बोया जाता है कि वृक्ष बनने पर पूरा वन जल जाता है। रात फिर शांत हो गई, पर अब राज्य की शक्ति संरचना बदल चुकी थी, और एक प्राचीन अमर साधक अपने वंश की राख पर खड़ा अब अकेला था। अंधस को दूर राज्य में हुए महाविनाश की कंपन अभी भी सूक्ष्म तरंगों की तरह फैल रही थी। गुरुकुल के शांत कक्ष में बैठे अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। कुछ बदल गया था। वो स्थिर बैठा रहा, फिर उसके हाथ स्वतः ही चलने लगे। एक दो तीन जटिल मुद्राएं हवा में सूक्ष्म चिन्ह उभरे, क्षण भर को चमके और फिर अदृश्य हो गए। अगले ही पल उसके कक्ष के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा वृत्त खड़ा हो गया। बाहर से देखने पर सब सामान्य था, दीपक की लौ स्थिर, ऊर्जा की लय साधारण। जो भी झांकता उसे यही प्रतीत होता कि अर्जुन साधारण ध्यान में लीन है। पर भीतर ऊर्जा की दिशा बदल चुकी थी। तभी कक्ष के मध्य हवा हल्की सी कांपी, एक काली चमक प्रकट हुई। वो पूर्ण कमल नहीं था, बस एक अंश, एक पंखुड़ी या शायद उसका केंद्र बिंदु, विस्फोट के बाद जीवित बचा हुआ अंश। वह धीरे धीरे अर्जुन के सामने मंडराने लगा। उससे स्वर्गीय बिजली की सूक्ष्म चिंगारियां निकल रही थीं, नीली, तीव्र पर नियंत्रित। अर्जुन ने उसे शांत दृष्टि से देखा। तुमने सोख लिया, उसने मन में कहा। अंश ने जैसे उत्तर दिया, एक हल्की कंपन के रूप में, फिर बिना किसी चेतावनी के। वो काला प्रकाश सीधा अर्जुन की छाती में प्रवेश कर गया। उसका शरीर क्षण भर को तन गया, नसें उभरी, आंखों में नीली रेखाएं चमकी। पर उसने प्रतिरोध नहीं किया, वह भीतर उतर गया, अपने चेतना क्षेत्र में। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने आंतरिक लोक में प्रवेश किया, वहां जहां उसका मणिपुर चक्र अभी पूर्ण विकसित भी नहीं हुआ था। एक नया दृश्य उपस्थित था। काला कमल का अंश उसके ऊर्जा केंद्र के ऊपर तैर रहा था। उसकी पंखुड़ी से नीली बिजली की सूक्ष्म धाराएं निकलती और फिर उसकी ऊर्जा धारा में मिल जाती। स्वर्गीय बिजली और काली अग्नि विलय हो रहे थे, पर टकराव नहीं था, वे संतुलन खोज रहे थे। अर्जुन ने अनुभव किया, उसकी ऊर्जा की गुणवत्ता बदल रही है, गहराई बढ़ रही है, घनत्व सघन हो रहा है। हालांकि उसकी साधना अभी औपचारिक रूप से प्रारंभ भी नहीं हुई थी, पर उसके भीतर कुछ ऐसा जन्म ले चुका था जो सामान्य साधकों के मार्ग से भिन्न था। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आई, स्वर्ग स्वयं वार करे और उसका अंश मेरे भीतर स्थिर हो जाए। उसने आंखें खोली। बाहर से सब कुछ शांत था। तीसरे चरण वाला साधक दूर से निगरानी कर रहा था और उसे अब भी वही साधारण ऊर्जा दिख रही थी। अर्जुन पुनः ध्यान में बैठ गया, पर अब उसके भीतर एक काला कमल था जिसमें स्वर्गीय बिजली की झलकियां चमक रही थीं। और यह केवल आरंभ था। अंधस को गुरुकुल का कक्ष बाहर से अब भी शांत था, पर भीतर अर्जुन के शरीर में तूफान उठ चुका था। काले कमल का अंश उसके आंतरिक लोक में स्थिर हुआ और अचानक नीचे की ओर सरकने लगा। पहले उसने मूलाधार चक्र को छुआ, वहां पहले से ही स्वर्गीय काली अग्नि की सूक्ष्म चिनगारी विद्यमान थी। वह अग्नि जिसे अर्जुन ने साधारण अग्नि की तरह नहीं बल्कि शून्य की ज्वाला की तरह धारण किया था, अब स्वाधिष्ठान चक्र में नीली विद्युत की लहरें फैलने लगी। काली अग्नि नीचे, स्वर्गीय बिजली ऊपर, दो विपरीत तत्व, दोनों जीवित, दोनों उभर। अर्जुन का शरीर कांप उठा, उसकी नसों में मानो पिघला हुआ लोहा बह रहा था, त्वचा लाल पड़ने लगी, सांसें अनियमित हो गईं। उसे सचमुच लगा जैसे उसकी चमड़ी भीतर से गल जाएगी, जैसे ऊर्जा उसकी देह को फाड़कर बाहर निकलना चाहती हो। उसकी साधना अभी प्रारंभिक थी, मणिपुर चक्र भी पूर्ण विकसित नहीं हुआ था, और अब दो दैवी तत्व उसके भीतर संघर्ष कर रहे थे। वेदना इतनी तीव्र थी कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, पर उसने चीख नहीं मारी। उसने दोनों हाथ उठाए, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, फिर भी वे जटिल प्रतीक बनाने लगी, एक त्रिकोण, उसके भीतर एक वृत्त, फिर उसके ऊपर अर्धचंद्राकार रेखा। हवा में सूक्ष्म मंत्र चिन्ह प्रकट हुए, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर चमकते अक्षर उभरे, नीले और काले मिश्रित। वे मंत्र साधारण भाषा के नहीं थे, वे ऊर्जा के सूत्र थे। जैसे ही अंतिम प्रतीक पूर्ण हुआ, नीली बिजली उछली। क्षणभर को लगा कि वह अर्जुन की चेतना को फाड़ देगी, पर मंत्रों ने उसे घेर लिया। स्वाधिष्ठान चक्र के चारों ओर एक ज्यामितीय ऊर्जा जाल बन गया। बिजली की धाराएं उस जाल से टकराई और भीतर सीमित हो गईं। वे पुनर्तः शांत नहीं हुई, पर अब नियंत्रित थी। नीचे मूलाधार में काली अग्नि भी स्थिर हो गई, मानो उसे पता हो कि समय अभी नहीं आया। अर्जुन का शरीर पसीने से भीग चुका था, उसकी सांस भारी थी, पर उसकी त्वचा अब नहीं जल रही थी। धीरे धीरे पीड़ा कम हुई। उसने भीतर देखा, मूलाधार में काली अग्नि घूम रही थी। स्वाधिष्ठान में नीली बिजली बंधी हुई थी, दोनों सक्रिय पर कैद। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अभी तुम दोनों मेरे नहीं हो, उसने मन में कहा, पर भाग भी नहीं सकते। उसके होठों पर थकी हुई मुस्कान आए। बाहर पहरा दे रहा तीसरे चरण का साधक केवल इतना देख पाया कि अर्जुन के कक्ष से ऊर्जा की लय थोड़ी तेज हुई, फिर स्थिर हो गई। उसे अब भी कुछ असामान्य प्रतीत नहीं हुआ। अंदर एक ऐसा मार्ग बन चुका था जो सामान्य साधकों के लिए असंभव था। अंधस्को रात की वह भीषण साधना अर्जुन के लिए सीमा से परे थी। स्वर्गीय बिजली को बांधना, काली अग्नि को शांत करना, उसकी चेतना उस संघर्ष में लगभग टूट चुकी थी। जैसे ही ऊर्जा अस्थायी संतुलन में आई, उसका शरीर और मन साथ छोड़ गए। वह बिस्तर पर गिर पड़ा, बेहोश, पर उसके कक्ष के चारों ओर बना सुरक्षा कवच अब भी सक्रिय था। मंत्र चिन्ह दीवारों में विलीन होकर सूक्ष्म कंपन बनाए हुए थे। बाहर से सब सामान्य, भीतर एक मौन परिवर्तन आरंभ हो चुका था। अर्जुन बेहोश था, पर उसके भीतर की ऊर्जा जाग रही थी। मूलाधार में काली अग्नि धीमे धीमे घूम रही थी, जैसे किसी धातु को शुद्ध कर रही हो। स्वाधिष्ठान में बंधी स्वर्गीय बिजली उसकी नसों के भीतर सूक्ष्म स्पंदन भेज रही थी। उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे सघन होने लगी, त्वचा के नीचे ऊर्जा का घनत्व बढ़ने लगा। जो पुराने घाव थे, जो वर्षों की कठिनाइयों के निशान थे, वे हल्के पड़ने लगे। त्वचा मानो भीतर से पुनर्निर्मित हो रही थी। उसकी श्वास गहरी हो गई। यह उपचार नहीं था, यह पुनर्गठन था। रात बीत गई। दीपक का तेल कब समाप्त हुआ, कक्ष कब अंधकार में डूबा, उसे कुछ ज्ञात नहीं। सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आए और सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। अर्जुन की पलकें कांपी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। क्षण भर के लिए उसे समझ नहीं आया वो कहाँ है। फिर स्मृति लौटी। उसने अपने शरीर को हिलाया, वो रुक गया। दर्द लगभग गायब था। उसने मुट्ठी बांधी। शक्ति कल से अधिक थी, परंतु स्थिर नहीं। अगर मैं ऐसे ही सोता रहा, उसने हल्की हंसी के साथ सोचा, तो शायद सचमुच मर जाऊं। वो तुरंत उठकर आसन पर बैठ गया। कुछ क्षण श्वास साधना की, ऊर्जा की जांच की। मूलाधार स्थिर, स्वाधिष्ठान नियंत्रित, पर भीतर गहराई में बिजली अब भी जीवित। उसने सुरक्षा कवच हटाया। मंत्र चिन्ह हवा में घुले और अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद गुरुकुल में चहल पहल शुरू हुई। शिष्यों के कदमों की आहट, दूर कहीं लकड़ी के टकराने की ध्वनि, प्रातःकालीन घोष। अर्जुन ने साधारण वस्त्र धारण किए और कक्ष से बाहर निकला। गलियारे में चलते हुए कुछ शिष्य उसके पास से गुजरे, फिर थिथक गए। ये अर्जुन है, उनकी आंखों में संदेह था। उसका चेहरा वही था, पर कुछ बदल चुका था। त्वचा अधिक स्वच्छ, आंखें गहरी, देह का संतुलन स्थिर। उसकी चाल में अनजाना आत्मविश्वास था। अर्जुन ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह सामान्य रूप से अपनी कक्षा की ओर चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर उसके भीतर काली अग्नि और स्वर्गीय बिजली एक ही शरीर में धीरे धीरे अपनी सीमा खोज रहे थे, और यह परिवर्तन अभी केवल प्रारंभ था। अंधस्को गुरुकुल की प्रातःकालीन वायु सामान्य थी, पर प्रधान आचार्य के मन में हलचल थी। रात के तृतीय प्रहर में, जब अधिकांश शिष्य निद्रा में थे, उन्होंने ध्यानावस्था में एक तीव्र ऊर्जा विकृति महसूस की थी। वो विकृति गुरुकुल के भीतर नहीं, दूर कहीं से उठी थी, जैसे आकाश स्वयं फटा हो। प्रधान आचार्य ने उस समय अपनी चेतना फैलाने का प्रयास किया था, पर जो तरंगें उन्हें मिली, वे असामान्य थीं, स्वर्गीय प्रकृति की, और साथ ही शून्य जैसी। यह इस क्षेत्र की साधारण शक्ति नहीं थी, उन्होंने मन ही मन सोचा। सुबह होते ही वे सभा प्रांगण की ओर जा रहे थे कि एक युवा शिष्य हाँफता हुआ भीतर आया। आचार्य, समाचार, समाचार। प्रधान आचार्य रुके, शांत होकर कहो। वीरेंद्र का महल नष्ट हो गया, पूरा वंश लगभग समाप्त। रात में कोई भयंकर दैवी प्रहार हुआ। सभा स्थल में उपस्थित सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। क्या कहा, एक वरिष्ठ शिष्य ने अविश्वास से पूछा। कहते हैं आकाश से नीली बिजली और अग्नि उतरी, पूरा महल भस्म हो गया, कोई जीवित नहीं बचा सिवाय उनके परदादा के, जो स्वयं गंभीर रूप से घायल हैं। प्रधान आचार्य की आंखें एक पल को स्थिर हो गईं। नीली बिजली, अग्नि, रात की ऊर्जा विकृति स्मृति में पुनः उभरी, स्वर्गीय बादल, उन्होंने धीमे से कहा। सभा में मौन छा गया। उसी समय सभा के एक कोने में तीसरे चरण का वह साधक बैठा था, जो वीरेंद्र के लोगों में से था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह केवल शिष्य नहीं था, वह एक सेतु था। वीरेंद्र के परिवार और गुरुकुल के बीच सूक्ष्म लेन देन, सूचनाएं, कुछ गोपनीय समझौते, वह उन सब में संलग्न था। पूरा वंश, उसने भीतर से कांपते हुए सोचा, यदि वीरेंद्र का परिवार समाप्त हो गया तो उसके संरक्षण का क्या, उसके रहस्यों का क्या, उसके नाम का क्या? उसकी आंखों में क्षण भर को भय चमका, फिर वह तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी दृष्टि सभा में घुमाई और अनायास अर्जुन पर ठहर गई। अर्जुन सामान्य शिष्यों की पंक्ति में खड़ा था, चेहरा शांत, आंखें स्थिर, पर आज उसमें कुछ भिन्न था। तीसरे चरण का साधक अब स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। अर्जुन की ऊर्जा लय बदल चुकी है, वो अधिक गहरी थी, अधिक सघन। हालांकि उसका साधना स्तर अभी भी प्रारंभिक प्रतीत हो रहा था, पर उसकी आभा में एक विचित्र स्थिरता थी, जैसे किसी गहरे स्रोत को छिपा रही हो। यह असंभव है, उसने सोचा, कल तक ये बालक मणिपुर चक्र तक नहीं पहुंचा था। उसने ध्यान से देखा, अर्जुन की सांसें नियमित थीं, उसकी नाड़ी स्थिर, पर उसकी दृष्टि वह अब साधारण शिष्य की नहीं थी। प्रधान आचार्य ने सभा समाप्त की और अपने कक्ष में लौट आए। उन्होंने पुनः ध्यान लगाया, ऊर्जा विकृति की दिशा खोजने का प्रयास किया, पर अब वह तरंग लुप्त हो चुकी थी, केवल एक सूक्ष्म कंपन शेष था गुरुकुल के भीतर। उन्होंने अपनी चेतना फैलाकर प्रत्येक शिष्य की ऊर्जा जांची। जब वो अर्जुन तक पहुंचे, क्षण भर को उन्हें एक हल्का प्रतिरोध महसूस हुआ, जैसे कोई पर्दा, उन्होंने भौहें सिकोड़ ली, ये पर तुरंत सब सामान्य हो गया। अर्जुन की ऊर्जा पुनः साधारण प्रतीत हुई। प्रधान आचार्य ने आंखें खोली, संयोग या कुछ और। दूसरी ओर तीसरे चरण का साधक अब निर्णय ले चुका था, सीधी टक्कर मूर्खता होगी, वह गुप्त जांच करेगा। उस दिन से उसने अर्जुन पर सूक्ष्म निगरानी आरंभ कर दी। कक्षा में, भोजनालय में, ध्यान स्थल पर उसकी दृष्टि अनायास अर्जुन पर ठहर जाती। एक दिन उसने अभ्यास के दौरान जानबूझकर अपनी ऊर्जा लहर थोड़ी सी फैलाकर देखी। सामान्य शिष्य असहज हो उठे, पर अर्जुन क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखें एक पल को उस साधक से मिली, सीधी, निर्भीक, जैसे वो सब जानता हो। तीसरे चरण के साधक के भीतर एक सिहरन दौड़ गई, ये बालक या तो अत्यंत मूर्ख है या अत्यंत खतरनाक। और उसी क्षण उसने तय किया, वह स्वयं नहीं बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से अर्जुन को परखेगा। धीरे धीरे, सावधानी से, उधर प्रधान आचार्य खिड़की से बाहर देखते हुए विचारमग्न थे। यदि स्वर्गीय प्रहार हुआ है तो कारण अवश्य होगा, और यदि कारण यहाँ है। उनकी दृष्टि अनायास शिष्यों के अभ्यास स्थल की ओर चली गई, जहां अर्जुन शांत भाव से लकड़ी की तलवार घुमा रहा था, धीमा पर सटीक, और उसके भीतर काली अग्नि और स्वर्गीय बिजली अब मौन सह अस्तित्व में थी। गुरुकुल की शांति बनी रही, पर अब तीन दृष्टियां अर्जुन पर थीं, प्रधान आचार्य, तीसरे चरण का साधक, और दूर कहीं घायल अमर साधक जो अपने वंश की राख से उठकर उत्तर खोज रहा था। खेल गहरा हो चुका था और अर्जुन उसके केंद्र में खड़ा था।